नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश। नमस्कार प्रेम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
धन्यवाद प्रियंका, सभी को नमस्कार।
आगे बढ़े उससे पहले अब तक की हेडलाइंस जान लेते हैं। पेरू में ISSF विश्व कप निशानेबाजी के दूसरे चरण में कल भारतीय निशानेबाजों का दबदबा। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सुरुचि सिंह ने स्वर्ण, मनु भाकर ने रजत और सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक जीते। रोहन बोपन्ना और अमेरिका के बेन शेल्टन की जोड़ी बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से जारी। कल रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 16 रन से हराया। और दक्षिण कैलिफोर्निया का पोमोना शहर लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में क्रिकेट की मेजबानी करेगा। तो पेरू में ISSF विश्व कप निशानेबाजी का दूसरा चरण चल रहा है और हमारे लगभग सभी निशानेबाज सटीक निशाने साध रहे हैं। कल भारतीय निशानेबाजों का दबदबा रहा। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सुरुचि सिंह ने स्वर्ण, मनु भाकर ने रजत और सौरभ चौधरी ने कांस्य के लिए सटीक निशाने लगाए। एक रिपोर्ट सुनते हैं, फिर बात करते हैं।
भारत की युवा निशानेबाज सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है, जबकि पेरिस ओलंपिक की पदक विजेता मनु भाकर ने रजत पदक जीतकर प्रतियोगिता में भारत का दबदबा सुनिश्चित किया। सुरुचि ने ब्यूनस आयर्स में हाल में विश्व कप के पहले चरण में भी स्वर्ण पदक जीता था। 18 वर्षीय सुरुचि ने 24 शॉट के फाइनल में 243.6 का स्कोर बनाकर मनु को 1.3 अंक से पीछे छोड़ा। चीन की खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। इससे पहले भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का खाता खोला था। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में शानदार प्रदर्शन के कारण भारत पदक तालिका में 3 पदकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है। चीन दूसरे नंबर पर है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
प्रेम जी, सुरुचि ने वर्ल्ड कप के पहले चरण में अपना पहला स्वर्ण जीता और दूसरे चरण में दूसरा स्वर्ण हासिल कर लिया, तो लग रहा है कि सुनहरी स्वर्णिम राह पर चल रही हैं युवा निशानेबाज।
बिल्कुल, एक तरफ तो जो है ओलंपियन मनु भाकर हैं और एक तरफ ये हमारी युवा जो है शूटर हैं, तो निश्चित रूप से जैसे पिछले 10-15 दिन में अगर देखते हैं तो अलग अलग स्पर्धाओं में बहुत सारी ऐसी अच्छी खबरें हम लोगों को स्पोर्ट्स में मिली है, खासकर जिस पे पूरा हिंदुस्तान गर्व कर सकता है। और अगर हम इस तरीके से देखें कि एक ओलंपियन के साथ जो दूसरे प्लेयर्स खेल रहे हैं वो भी उतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो उनके साथ रह के गोल्ड जीत रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारत का जो पिछले 8-10 साल में जिस तरीके से एक नई खेल संस्कृति डेवलप हुई है वो आगे का जो भविष्य है वो निश्चित रूप से स्वर्णिम है।
क्योंकि अगर देखा जाए, आपने कहा कि एक मतलब प्रोत्साहन मिलता है आप जब से आपके सामने मनु भाकर जैसे खिलाड़ी हैं, और मनु भाकर और सुरुचि के स्कोर में जो फाइनल स्कोर था उसमें सिर्फ 1.3 का अंतर था। सुरुचि ने 243.6 और मनु ने 242.3 का अंक लिया था।
बिल्कुल, यही तो अच्छी चीज़ है कि जब आप किसी बड़े प्लेयर के साथ खेल रहे हो तो संभव आपका, क्योंकि आप खुद के ही देश के प्लेयर के साथ खेल रहे हो तो वहाँ आपका उनसे कंपटीशन नहीं है बल्कि एक मोटिवेशन है, और यहाँ कॉम्पिटिशन खुद से हो जाता है। तो जो प्लेयर है उसके अंदर एक भूख जागती है, वो ये सोचता है कि मैं अपना बेहतर कैसे दे सकता हूँ। तो ये जो अभी जिस तरीके से बैक टू बैक ये पदक इन्होंने जीते हैं, मुझे लगता है कि ये और इतने पदक जीतने के बाद कंटिन्यू अगर उनका प्रदर्शन बरकरार है तो ये निश्चित रूप से आगे के लिए बहुत लंबे तक चलने वाले प्लेयर हैं।
और अगर सौरभ चौधरी की बात करें तो जैसी उम्मीद थी वैसा ही देखा, क्योंकि पहले वो फॉर्म में नहीं थे पर ब्यूनस आयर्स में भी उन्होंने ब्रॉन्ज जीता और अब कल फिर उन्होंने कमाल कर दिखाया।
हाँ, निश्चित रूप से फॉर्म ऊपर नीचे प्लेयर की होती है, लेकिन एक जो है हम कहते हैं ना कि एक क्लिक चाहिए, एक किक चाहिए, एक इवेंट जो है किसी भी प्लेयर का हौसला वापस से उसी जगह पे ला देती है जहां से वो छोड़ता है। और क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण भी ये भी है कि हम लोग कहते हैं कि जब आप लगोगे ही नहीं या प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो निश्चित रूप से वो मोड़ शायद आए ना आए, लेकिन अगर प्लेयर के अंदर ये चीज होती है कि प्रैक्टिस की भूख या सोना जीतने की भूख या विजयी होने की भूख जो है वो कभी खत्म नहीं होती, और यही एक चीज है जो उसको सीढ़ी दर सीढ़ी कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाती है।
और आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा भी हो रही है और इसमें भी हमारा लगभग एक पदक पक्का हो गया है, क्योंकि जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं इसमें सुरुचि सिंह, सौरभ चौधरी, मनु भाकर, रविंद्र सिंह चुनौती पेश कर रहे हैं। और अगर जो प्री एलिमिनरी रिजल्ट है क्वालिफिकेशन राउंड में, तो उसमें सुरुचि और सौरभ चौधरी की जोड़ी दूसरे स्थान पर रही है और गोल्ड के लिए जो मैच होना है उसके लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो या तो वो गोल्ड जीतेंगे या रजत, लेकिन हम उम्मीद करेंगे गोल्ड जीतेंगे।
बिल्कुल, इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है कि जैसे पिछले साल नई दिल्ली में भी जो शूटिंग नेशनल्स हुए तो 7 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते सुरुचि ने। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतना जो युवा है एकदम, और उस उम्र में बहुत प्यारा इनका प्रदर्शन है, तो बहुत प्राउड फील होता है मुझे लगता है ऐसे कि हर किसी के लिए, हर खेल प्रेमी के लिए, पूरे देश के लिए, कि देश से बाहर जाके, नेशनल में ही नहीं, अब देश से बाहर जाके देश का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और वहां से सोना जीत भी रहे हैं।
और ये भी बता दें कि इसी स्पर्धा में मनु भाकर, रविंद्र सिंह की जो जोड़ी है उन्होंने ब्रॉन्ज के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो देखते हैं वो हमारे लिए कहाँ से पदक लेकर आते हैं, नहीं पर वी हैव क्रॉस्ड आवर फिंगर्स और उम्मीद करते हैं कि हमारे पास और 2 पदक आए।
बिल्कुल बिल्कुल।
अब आगे बढ़ते हैं, टेनिस कोर्ट पर जाते हैं। रोहन बोपन्ना और अमेरिका के बेन शेल्टन की जोड़ी बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। जर्मनी के म्यूनिख में क्वार्टर फाइनल में कल उनका सामना बेल्जियम के सैंडर गिल और पोलैंड के जेन जेलेंस्की से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में रोहन और बेन शेल्टन की जोड़ी ने ब्रिटेन के जेमी मरे और अमरीका के राजीव राम को 6-4, 6-3 से पराजित किया। पिछले कुछ समय में जब ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम जीता पिछले साल रोहन बोपन्ना ने, तो बहुत अच्छी फॉर्म में थे, रैंकिंग में भी नंबर 1 पर रहे, लेकिन उसके बाद इस साल जो मल्टीपल इवेंट्स हुए हैं उसमें अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आए, पर ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा से फॉर्म में आ चुके हैं।
देखिए, मैं रोहन बोपन्ना के बारे में एक ही बात कहूंगा कि 45 साल का युवा है वो, है ना। तो 45 साल की उम्र में, और पिछले साल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में उन्होंने जीता, 43 साल और 9 महीने की उम्र में जीता, जो एक रिकॉर्ड भी है। तो ऐसे में मतलब उनकी फॉर्म पे सवाल उठाना या ये एक बहुत अलग सा गेम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी रिटायरमेंट होने की, रिटायर हो जाते हैं प्लेयर्स यूजुअली, और टेनिस ऐसा गेम नहीं है जहां पे कि बहुत आराम से खेला जा सके। टेनिस में शारीरिक जो मेहनत है वो बहुत ज्यादा लगती है। तो ऐसे में अगर इतने अचीवमेंट्स रोहन बोपन्ना कर रहे हैं तो ये काबिले तारीफ है, मतलब बियॉन्ड वर्ड्स।
और उधर भारत के युकी भांबरी और अमेरिका के रॉबर्ट गैलोवो की जोड़ी को प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। अब बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में इस समय दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 14वें ओवर में 3 विकेट पर 104 रन बना लिए हैं। और जैसे देखा जाए तो जो जो अभी प्लेयर्स हमारे आउट हुए हैं इसमें, तो जैक जो है वो पिछले काफ़ी समय से फॉर्म में, और पिछले सत्र में आक्रामक बल्लेबाजी की थी पर इस सत्र में बिल्कुल नहीं चल रहे हैं और आज भी 9 रन बनाकर आउट हुए।
हाँ बिल्कुल, अब ये तो बड़े बड़े प्लेयर्स कई बार जो है फेल हो जाते हैं। हालांकि दिल्ली की टीम की बात करें तो दिल्ली की टीम ठीक ठाक अभी फॉर्म में है, और मेजरली जो 2-3 प्लेयर्स है, जैसे आज पोरेल बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके वो भी हालांकि आउट हो गए हैं, और केएल राहुल तो निश्चित रूप से अच्छे फॉर्म में चल ही रहे हैं। तो फिलहाल तक मैच का जो है रुख ठीक ही है, 13.5 ओवर में हमारे सामने स्क्रीन पे है 105 रन हो गए हैं, 4 विकेट चले गए हैं। तो हालांकि क्योंकि आईपीएल का संस्करण ही ऐसा है जहां एक अकेला प्लेयर 40-45 बोल पे 130-140 रन भी मार देता है, और एक तरफ होता है कई बार हम जैसे कल का मैच हुआ उस पर हम अभी बात करेंगे कि 111 पे भी डिफेंड किया जा सकता है। तो मैच के बारे में तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों ही टीम बहुत अच्छी है। राजस्थान रॉयल्स भी चैंपियन भी रह चुके हैं और बड़ा स्कोर भी बना चुके हैं, और जो है चेज करते हुए बड़ा स्कोर बना चुके हैं।
केएल राहुल से भी बहुत उम्मीद है क्योंकि मध्य क्रम का जो है दारोमदार उन्होंने ही संभाल रखा है, और उनका आउट होना थोड़ा सा शायद प्रेशर हो उसके लिए दिल्ली के लिए, लेकिन अभी है ट्रिस्टन है, आशुतोष हैं, तो शायद और
बिल्कुल अभी उम्मीद की जा सकती है कि टीम को जो शुरुआत मिली थी बीच में थोड़ा सा लड़खड़ा है, लेकिन केएल राहुल ने फिर से वापस जिस तरीके की शुरुआत पहले से वो दे रहे हैं मध्यक्रम में आके वो दी, और अभी ठीक ठाक लेवल पे मैच है। अगर ठीक अच्छा स्कोर बनाया, मतलब 180 के आसपास का स्कोर होना चाहिए, तो एक फाइटिंग टोटल रहेगा।
करुण नायर भी आज शून्य पर आउट हुए जो पिछली बार 89 रन बनाकर आउट हुए।
हाँ बिल्कुल, उन्होंने 40 बॉल पे 89 रन बना के बहुत सारे आलोचकों के मुंह बंद किए, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए। तो देखो अभी आगे मौके हैं उनके लिए।
और दिल्ली के लिए थोड़ा प्रतिष्ठा से भी जुड़ा, क्योंकि पिछला मैच वो दिल्ली में ही हार गई थी अपने घरेलू मैदान पर, और आज भी दिल्ली में ही मैच हो रहा है, तो चाहेगी दिल्ली कैपिटल्स की वो मैच जीते।
दोनों ही टीमों के लिए इस तरह की स्थिति है, राजस्थान भी अपने होम ग्राउंड पे जो पिछला मैच है वो हार चुकी थी, तो दोनों चाहेंगे कि वो जीत की लय बरकरार, मतलब वापस लय में आ जाए जीत की।
और अगर अब कल के मैच की बात करें तो कल एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला आईपीएल में। पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 16 रन से हरा दिया। इस बारे में एक रिपोर्ट है हमारे संवाददाता शक्ति की, आइए सुनते हैं।
आईपीएल में कल के मैच में गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। युजवेंद्र चहल की फिरकी ने कोलकाता के लिए 112 रन के आसान लक्ष्य को भी कठिन साबित कर दिया। पंजाब ने आईपीएल मुकाबले में सबसे छोटे लक्ष्य का बचाव करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 16 रनों से हरा दिया। चहल ने लय में वापसी करते हुए 28 रन देकर 4 विकेट लिए और टीम को यादगार जीत दिलाई। उन्होंने जीत की ओर बढ़ रहे नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी की सलामी जोड़ी की साझेदारी को तोड़ा और उसके बाद रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह को भी पवेलियन भेजा। मार्को यानसेन ने भी चहल का साथ देते हुए 17 रन देकर 3 विकेट लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने मात्र 95 रन पर पंजाब की गेंदबाजी क्रम के आगे घुटने टेक दिए। इससे पहले कोलकाता के गेंदबाजों ने भी पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की पूरी टीम को 16वें ओवर में ही 111 रन पर समेट दिया। पंजाब के लिए सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन ने 30 और प्रियांश आर्या ने 22 रन की पारी खेलकर अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद पंजाब का कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल सका। कोलकाता के लिए हर्षित राणा ने 3, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए। युजवेंद्र चहल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
तो चहल की फिरकी ने कल आईपीएल की गेम ही पलट कर रख दी है।
बिल्कुल बिल्कुल, कल का जो मैच है वो निश्चित रूप से बहुत लंबे टाइम तक याद रखा जाने वाला मैच है, जहां पे चहल की एक तरफ फिरकी, दूसरी तरफ मैं जो है दाद देता हूँ श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी की, जिन्होंने पिछली बार कोलकाता को जो है चैंपियन बनाया और इस बार जो है वो पंजाब की कैप्टेंसी कर रहे हैं। और वहाँ भी किस मौके पे युजवेंद्र चहल का उन्होंने उपयोग किया, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं अगर कहूँ एक कैप्टन के रूप में, तो ये क्योंकि इंडियन टीम में खेल रहे हैं ऑलरेडी, तो कुछ ऐसे नाम से जैसे हम हार्दिक पांड्या की बात करें, सूर्य कुमार यादव की बात करें या श्रेयस अय्यर की बात करें, उस कल को जाके इंडियन टीम की कैप्टनसी भी संभालने लायक कहीं कहीं एक जो अनुभव है वो यहाँ से गेन कर रहे हैं कैप्टन के रूप में। तो कल का ऐसा मैच है जहां 111 रन बनाने के बाद कोई भी सोच सकता है कि पंजाब इस मुकाबले से बाहर है, लेकिन उस मैच में इन्होंने 95 रन पे जो है केकेआर को रोक दिया।
तो कल देखा जाए तो गेंदबाजों का ही दबदबा रहा, क्योंकि केकेआर के जो हर्षित राणा ने भी जिस तरह से 3 विकेट लिए उन्होंने लगातार, तो ऐसे लग रहा था कि बस केकेआर जीतेगी ही जीतेगी, पर फिर से जैसे चहल ने गेंदबाजी की तो गेम का रुख ही बदल दिया।
बिल्कुल।
और अब कल के बारे में आपको बता देते हैं, कल मुंबई में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा। अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया का पोमोना शहर 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के दौरान क्रिकेट प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने कल इसकी घोषणा की। इसका आयोजन पोमोना के फेयर ग्राउंड में होगा। ये शहर ओलंपिक खेलों के मुख्य शहर लॉस एंजलिस से 48 किलोमीटर दूर है। क्रिकेट प्रतियोगिता T20 प्रारूप में खेली जाएगी, जिसमें पुरुष और महिला वर्ग में 6-6 टीमें भाग लेंगी। एक सदी से अधिक समय बाद ओलंपिक्स में वापसी करने वाला ये खेल अंतिम बार 1900 में खेला गया था, तो सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसको देखने का।
जी, गेम की लोकप्रियता इतनी है कि मुझे लगता है कि ओलंपिक काउंसिल को भी ये लगा कि भाई इस गेम की लोकप्रियता जो है ओलंपिक्स की और ज्यादा लोकप्रियता बढ़ा सकती है, और निश्चित रूप से एक फॉर्मेट है T20 का जो सबको रोमांचित करता है।
इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 में कल पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने किशोर जेना को मामूली अंतर से हराकर खिताब जीत लिया। चेन्नई में यशवीर ने 77.49 मीटर रिकॉर्ड के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि जेना ने 75.99 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। दोनों एथलीटों ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के योग्यता मानक 75.36 मीटर को पार कर लिया। इस प्रतियोगिता का अगला चरण 21 अप्रैल को चेन्नई में ही होना है। एशियाई चैंपियनशिप अगले महीने कोरिया गणराज्य के गुमी में होने वाली है। और उधर भारत के नितिन गुप्ता ने आज सऊदी अरब के दम्मम में 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 5000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक जीता। समय कह रहा है अपने श्रोताओं से अनुमति ली जाए, तो प्रेम प्रकाश जी आप स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद प्रियंका, शुभ रात्रि।
श्रोताओं, प्रियंका अरोरा स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।